एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी उपन्यास पर बात करने वाले हैं, हान्या यानागिहारा का टू पैराडाइज।
हाँ, हान्या यानागिहारा मतलब समकालीन अमेरिकी साहित्य में इनका नाम काफी बड़ा है।
बिल्कुल, लॉस एंजेलस में जन्मी, उनकी जड़ें जापान और कोरिया से जुड़ी हैं और ये बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके लेखन में साफ दिखती है, खासतौर पर जब वो पहचान, अपनेपन की तलाश या मानवीय रिश्तों की उलझनों पर लिखती हैं।
और उनका पिछला उपन्यास अ लिटिल लाइफ 2015 वाला, उसे कौन भूल सकता है भाई। उसने तो दुनिया भर में तहलका मचा दिया था, बहुत तारीफ हुई, पर साथ ही एक बहस भी छिड़ी थी मानवीय पीड़ा और सहन शक्ति पर। बहुत इंटेंस किताब थी वो।
हाँ, भावनात्मक रूप से झिझोड़ने वाली, और यानागिहारा की शैली ही ऐसी है। मतलब वो किरदारों के अंदर बहुत गहरे उतरती हैं, भावनाओं की बारीकियां पकड़ती हैं, और विषय भी बड़े होते हैं, प्रेम, हानि, घर की तलाश।
और ये भी कि कैसे इतिहास, मतलब बड़ी घटनाएं, समाज की लहरें, एक आम इंसान की जिंदगी को, उसकी किस्मत को
बदल देती हैं।
सही कहा।
और टू पैराडाइज, जो जनवरी 2022 में आया, वो इसी शैली को और आगे ले जाता है। इसकी बनावट ही बहुत अलग है, तीन हिस्से हैं इसमें, जैसे कोई ट्रिप्टिक पेंटिंग होती है ना, तीन पैनल वाली,
अच्छा हाँ,
वैसे ही। और तीनों हिस्से तीन अलग अलग समय में सेट हैं, 1893, 1993 और फिर भविष्य में 2093। और मजे की बात यह है कि ये तीनों ही अमेरिका के वैकल्पिक यथार्थ हैं, मतलब हमारी जानी पहचानी दुनिया नहीं है ये।
ओके, और इन तीनों अलग दुनियाओं को जोड़ता क्या है?
एक घर, न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क के पास एक टाउन हाउस। ये घर तीनों कहानियों में मौजूद है, जैसे समय का गवाह हो।
दिलचस्प। और किताब का मूल विचार क्या है? टू पैराडाइज मतलब स्वर्ग की ओर।
हाँ, कह सकते हैं ये इंसानी तलाश है स्वर्ग की। अब ये स्वर्ग क्या है? शायद प्यार, शायद आजादी, शायद सुरक्षा, या बस कहीं जुड़ जाने का एहसास, अपनापन।
और कैसे अलग अलग वक्त में, अलग अलग हालात में स्वर्ग की ये परिभाषा बदलती रहती है, शायद यही उपन्यास दिखाता है।
बिल्कुल, तो आज हम इसी पर बात करेंगे, तीनों कहानियों को समझेंगे, किरदारों के सफर को देखेंगे, और वो जो मुख्य सवाल हैं, जैसे आजादी बनाम सुरक्षा, या स्वर्ग का वो मोहक सा सपना जो अक्सर टूट जाता है, इन पर गौर करेंगे। वैसे ये उपन्यास बेस्टसेलर तो रहा, इसकी महत्वाकांक्षा की तारीफ भी हुई, पर अ लिटिल लाइफ जितनी एकमत प्रशंसा नहीं मिली इसे, कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं।
अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, 1893 वाले न्यूयॉर्क से।
हाँ, पहला खंड है वॉशिंगटन स्क्वायर।
तो ये हमें ले जाता है 1893 के न्यूयॉर्क, लेकिन ये एक वैकल्पिक न्यूयॉर्क है। ये तथाकथित स्वतंत्र राज्य यानी फ्री स्टेट्स का हिस्सा है, और यहाँ एक खास बात ये है कि कम से कम ऊंचे तबके में समान लिंग विवाह और रिश्ते समाज में स्वीकार्य हैं।
अच्छा, ये तो उस वक्त के हिसाब से काफी अलग बात है।
हाँ, पर समाज के अपने नियम और बंधन तब भी हैं। कहानी का मुख्य पात्र है डेविड बिंघम, एक बहुत अमीर बैंकिंग परिवार का वारिस, इकलौता। वो काफी संवेदनशील है, सेहत भी थोड़ी नाजुक रहती है, और अंदर से अकेला है।
बाहर से सब कुछ, पर अंदर खालीपन। माता पिता नहीं है शायद?
नहीं, और वो अपने दादाजी के साए में जीता है। काफी सख्त नियंत्रण है दादाजी का।
तो वो क्या कहते हैं, सोने का पिंजरा जैसा।
हाँ बिल्कुल, यही मुहावरा दिमाग में आता है। और दादाजी ने डेविड के लिए एक शादी भी तय कर दी है, चार्ल्स ग्रिफिथ नाम के एक सज्जन से। चार्ल्स भी अमीर हैं, उम्र में डेविड से काफी बड़े, विधुल हैं और स्वभाव से अच्छे लगते हैं।
तो ये रिश्ता डेविड को क्या देगा? सुरक्षा, स्थिरता।
हाँ, सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और एक तरह का शांत सा प्यार। और डेविड भी जैसे मान गया है, शायद कर्तव्य की वजह से या कोई और रास्ता न देख पाने की वजह से, वो तैयार है इस तयशुदा जिंदगी के लिए।
लेकिन फिर कहानी में कुछ अप्रत्याशित होता होगा।
हाँ बिल्कुल, तभी एंट्री होती है एडवर्ड बिशप की, एक तूफान की तरह। एडवर्ड एक बेहद आकर्षक पर गरीब संगीत का टीचर है। वो जैसे जुनून, रोमांच और पश्चिम की एक धुंधली सी रोमानी कल्पना का प्रतीक है। पश्चिम यानी जहां सच्ची आजादी है, कोई बंधन नहीं।
और डेविड
फौरन उसकी तरफ खिंच जाता है, बुरी तरह।
यहां से शुरू होता है टकराव। दिल और दिमाग का, कर्तव्य और इच्छा का।
बिल्कुल, डेविड और एडवर्ड के बीच एक छुपा हुआ गहरा प्रेम संबंध शुरू होता है। एडवर्ड डेविड को भड़काता है कि सब छोड़ छाड़कर मेरे साथ पश्चिम चलो, वहां हम आजाद रहेंगे, प्यार से जिएंगे। मतलब वो उसे उसके अपने स्वर्ग का सपना दिखाता है।
लेकिन दादाजी, वो अनुभवी हैं, उन्हें कुछ शक होता होगा।
हाँ, उन्हें एडवर्ड की नीयत ठीक नहीं लगती, वो चुपके से उसकी जांच करवाते हैं।
और सच कुछ और ही निकलता है।
हाँ, सच कड़वा होता है। पता चलता है कि एडवर्ड बिशप तो एक नंबर का धोखेबाज है, पहले से शादीशुदा है, बच्चे भी हैं और कर्ज में डूबा हुआ है। उसका पुराना रिकॉर्ड रहा है अमीर अकेले आदमियों को फंसाने का।
ओह, तो दादाजी ये सब डेविड को बता लेते हैं इस उम्मीद में कि अब वो चार्ल्स से शादी कर लेगा, सुरक्षित रास्ता चुन लेगा।
हाँ, वो सारी सच्चाई डेविड के सामने रख देते हैं, लेकिन यही कहानी का क्लाइमैक्स है। डेविड का फैसला सबको चौंका देता है।
क्या करता है वो?
वो न सिर्फ धोखेबाज एडवर्ड को ठुकराता है, बल्कि वो सुरक्षित अच्छे विकल्प चार्ल्स को भी मना कर देता है।
अच्छा, तो फिर
वो फैसला करता है कि वो किसी से शादी नहीं करेगा। आखिर में उसे अपने परिवार की सारी जायदाद मिलती है, लेकिन वो एक अकेला जीवन चुनता है। मतलब एडवर्ड का वो रोमांटिक स्वर्ग तो नहीं मिला, पर जो आजादी उसने चुनी वो भी कोई जश्न जैसी नहीं है, वो एक कठोर अकेली निर्वासन जैसी जिंदगी है।
ये पहली कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आजादी बनाम सुरक्षा का जो द्वंद्व है वो तो बिल्कुल साफ है। डेविड ने सोने का पिंजरा तोड़ा, पर आजादी उसे ले गई एकांत में।
हाँ, और स्वर्ग का वो भ्रम, एडवर्ड का वादा, पश्चिम की वो कल्पना, सब झूठा निकला।
और प्रेम, कर्तव्य, समाज की उम्मीदें और अपनी इच्छा, इनके बीच की कश्मकश भी है। डेविड का किरदार भी बदलता है, एक मासूम संरक्षित लड़के से मोहभंग होता है उसका, फिर वो एक कठोर सच को स्वीकार करता है और अपनी शर्तों पर जीने का फैसला लेता है, भले ही वो दुखद हो।
एडवर्ड का किरदार भी पेचीदा है। क्या वो सच में प्यार करता था या सिर्फ एक शिकारी था? और चार्ल्स, वो सुरक्षित किनारा जो शायद कभी घर नहीं बन पाता।
कुछ आलोचकों ने इस हिस्से में हेनरी जेम्स के उपन्यासों का प्रभाव भी देखा है, वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, उस दौर की औपचारिक भाषा।
हाँ, कह सकते हैं।
तो शायद इस कहानी से एक बात ये निकलती है कि स्वर्ग का वादा अक्सर एक छलावा होता है और आजादी की अपनी कीमत होती है जो कभी कभी अकेलेपन के रूप में चुकानी पड़ती है। चलिए अब 100 साल आगे चलते हैं, 1993 में। देखते हैं उसी शहर, उसी घर में क्या हो रहा है।
बिल्कुल, दूसरा खंड है लिपो वाओ। ये हमें 1993 के मैनहट्टन ले जाता है। ये वो वक्त है जब एड्स महामारी अपने चरम पर थी, शहर पर एक डर और उदासी का साया था।
और घर वही है, वॉशिंगटन स्क्वायर वाला।
हाँ, घर वही है। इस बार कहानी हमें पीटर नाम के किरदार के जरिए पता चलती है। वो अपने दोस्त डेविड बिंगहम और उसके पार्टनर चार्ल्स ग्रिफिथ के रिश्ते को याद कर रहा है।
फिर से डेविड और चार्ल्स, 100 साल बाद। ये सिर्फ नाम का दोहराव है या लेखिका कुछ गहरा संकेत दे रही है?
ये सवाल तो मन में आता है, शायद अंत तक कुछ साफ हो। खैर, ये वाला डेविड बिंगहम हवाई मूल का है, एक युवा पैरालीगल। वो अपने पार्टनर चार्ल्स ग्रिफिथ के साथ रहता है। चार्ल्स यहाँ भी एक अमीर, उम्रदराज, कामयाब वकील है।
और डेविड का स्वभाव कैसा है?
उसमें एक शांत सी उदासी है और अपनी हवाई विरासत से उसका एक गहरा जटिल जुड़ाव है। मतलब हवाई पर जो औपनिवेशिक कब्जा हुआ था उसका दर्द और उसके परिवार का कुष्ठ रोग के कलंक से जुड़ा इतिहास भी है। हवाई में कुष्ठ रोग को लीपो वाओ कहते थे।
यानी यहाँ निजी कहानी के साथ इतिहास का बोझ भी जुड़ गया है। और चार्ल्स के साथ इसका रिश्ता, क्या यहाँ भी वो सोने के पिंजरे वाली बात है?
कुछ हद तक हाँ। चार्ल्स डेविड से प्यार करता है, उसे बहुत शानदार सुरक्षित जिंदगी देता है, लेकिन रिश्ते में पावर बैलेंस बहुत बिगड़ा हुआ है। चार्ल्स का प्यार जताने का तरीका थोड़ा कंट्रोलिंग है। वो धीरे धीरे डेविड को उसके दोस्तों से, उसकी जड़ों से काट देता है, उसे खूबसूरत पर घुटन भरे दायरे में कैद कर लेता है।
और इन सब के बीच एड्स महामारी की सच्चाई भी है।
बिल्कुल, कहानी का असली संघर्ष तब शुरू होता है जब डेविड को एड्स हो जाता है। चार्ल्स उसकी बहुत देखभाल करता है, पर यह देखभाल भी एक तरह का नियंत्रण बन जाती है। वो डेविड को बाहरी दुनिया से, शायद लोगों की नजरों से बचाने के लिए घर में ही कैद सकर लेता है।
और दोस्त पीटर जैसे लोग,
वो ये सब बेबसी से देखते हैं, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कहानी डेविड की धीमी दर्दनाक मौत की तरफ बढ़ती है।
ओ, ये तो बहुत दुखद है। अंत में क्या होता है?
डेविड की मौत हो जाती है। चार्ल्स गहरे सदमे और शोक में डूब जाता है। वो डेविड की यादों को, उनके रिश्ते की निशानियों को जैसे किसी म्यूजियम की तरह सहेजने की कोशिश करता है। यहाँ खोया हुआ स्वर्ग डबल है, एक तो डेविड का हवाई का अतीत, उसकी पहचान, और दूसरा चार्ल्स और डेविड का वो प्यार जो बीमारी और नियंत्रण के बोझ तले खत्म हो गया।
ये खंड भी कई परतें खोलता है। बीमारी यहाँ सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रतीक बन जाती है, जैसे एड्स एक नया लीपोवा हो जो न सिर्फ शरीर को बल्कि सामाजिक रिश्तों को भी खत्म कर देता है, इंसान को अकेला कर देता है।
हाँ बिल्कुल, और प्यार में शक्ति का वो असंतुलन यहाँ और भी ज्यादा साफ दिखता है। चार्ल्स का प्यार देखभाल वाला है पर साथ ही अधिकार जताने वाला भी है, जैसे वो डेविड की अपनी पहचान को ही मिटा देना चाहता हो।
विरासत का थीम भी बहुत मजबूत है, कैसे इतिहास का दर्द, उपनिवेशवाद, बीमारी का डर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जिंदगी पर असर डालता है, और डेविड का अपनी पहचान के लिए संघर्ष हवाई जड़ें बनाम न्यूयॉर्क की जिंदगी कहानी के केंद्र में है।
इस डेविड का वो शांत दुख, उसकी सहन शक्ति पाठक पर असर करती है। चार्ल्स का किरदार भी आसान नहीं है, वो प्यार करता है पर उसका प्यार कब्जा करने वाला है, और पीटर जो कहानी सुना रहा है वो बस एक गवाह है। उसकी आवाज में एक उदासी है जो पूरी कहानी को एक शोक गीत जैसा बना देती है।
यहाँ याना की हरा की ये खूबी फिर दिखती है कि वो कैसे निजी दुख को, बीमारी, रिश्ते की उलझने, इतिहास की बड़ी ताकतों से, उपनिवेशवाद, महामारी जोड़ती हैं। ये खंड दिखाता है कि कैसे सुरक्षा का वादा भी घुटन बन सकता है और कैसे अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। चलिए अब भविष्य में चलते हैं, 100 साल और आगे, 2093।
हाँ, तीसरा और आखिरी खंड है जोन 8। ये हमें भविष्य के न्यूयॉर्क में ले जाता है, और ये भविष्य डरावना है, बिल्कुल डाइस्टोपियन। लगातार आई महामारियों ने दुनिया बदल दी है। अब यहाँ एक अधिनायकवादी मतलब टोटलिटेरियन राज्य का कब्जा है।
ओ।
हर नागरिक पर कड़ी निगरानी है, जिंदगी का हर पहलू कंट्रोल में है, शादी भी सरकार तय करती है, पूरा समाज बस जैव सुरक्षा बायो सिक्योरिटी के पीछे पागल है, बीमारी का डर हर जगह है।
तो मतलब सुरक्षा की तलाश ने आजादी को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये तो पहले खंड वाले द्वंद्व का एक्सट्रीम रूप हो गया। यहाँ कहानी किसकी है?
पर भी नजर रखी जाती है। इन्हीं चिट्ठियों से हमें इस घुटन भरी दुनिया का पता चलता है।
और चार्ली की जिंदगी में क्या हो रहा है?
उसकी शादी भी राज्य ने तय की है एडवर्ड नाम के एक आदमी से। ये एडवर्ड अक्सर बीमार रहता है जो इस समाज में बहुत बुरा माना जाता है।
यामी एडवर्ड, और क्या कोई बिंगहैम या ग्रिफिथ भी है?
हाँ, एक बड़ा कनेक्शन है। पता चलता है कि चार्ली के दादाजी का नाम डेविड बिंगहैम था। वो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, और विडंबना ये है कि उनके एक आविष्कार ने एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल इलाज जो लोगों में रिस्क लेने वाले व्यवहार को दबाने के लिए था, उसी ने अनजाने में इस दमनकारी राज्य की नींव रखने में मदद की।
बाप है, मतलब विज्ञान का अच्छा इरादा बुरा नतीजा बन गया, बचाव का हथियार नियंत्रण का हथियार बन गया।
बिल्कुल, यही विडंबना है।
क्या चार्ली और उसके इस पति एडवर्ड के बीच कोई असली रिश्ता पनपता है?
हाँ, धीरे धीरे, तमाम डर और बंधनों के बावजूद उनके बीच सच्चा गहरा प्यार हो जाता है। शायद यही प्यार उनके लिए सांस लेने की जगह है। लेकिन एडवर्ड की बीमारी बढ़ती जाती है, और क्योंकि वो अब समाज के लिए काम का नहीं रहा, राज्य उसे इच्छा मृत्यु मतलब यूथनेशिया देने का फैसला करता है।
ओह, तो चार्ली क्या करती है, मान लेती है?
नहीं, यही चार्ली बदलती है। वो एडवर्ड को बचाने के लिए, उसे इस सिस्टम से बाहर निकालने के लिए भागने का एक खतरनाक प्लान बनाती है। ये उसके किरदार का टर्निंग पॉइंट है, एक डरी हुई आज्ञाकारी नागरिक से एक विद्रोही प्रेमिका तक का सफर।
क्या वो कामयाब होती है? क्या वो एडवर्ड के साथ भाग पाती है?
क्लाइमैक्स पर चार्ली को एक बहुत मुश्किल और दर्दनाक सच का सामना करना पड़ता है। उसे लगता है कि अगर वो एडवर्ड के साथ गई तो दोनों के पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। उसका प्यार ही एडवर्ड के लिए खतरा बन सकता है।
तो
वो एक अविश्वसनीय फैसला लेती है, बहुत निस्वार्थ। वो खुद पीछे रह जाती है और अकेले एडवर्ड के भागने का इंतजाम करती है, उसे एक अनजान भविष्य की ओर भेज देती है।
वो खुद पीछे रह जाती है नतीजों का सामना करने।
हाँ, वो एडवर्ड की आजादी के लिए अपनी आजादी, शायद अपनी जान दांव पर लगा देती है, और शायद इसी त्याग में, इसी प्यार में चार्ली को अपना स्वर्ग मिलता है। एक ऐसा स्वर्ग जो बाहर नहीं, अंडर है, मानवीय संबंध और बलिदान में।
ये अंत तो बहुत शक्तिशाली है और सोचने पर मजबूर करने वाला। ये तीसरा खंड कई बड़े मुद्दे उठाता है। कैसे सुरक्षा की चाहत आजादी को निगल सकती है, कैसे डर से तानाशाही पैदा होती है, विज्ञान के अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं,
और यहाँ प्यार एक तरह का विद्रोह बन जाता है, दमन के खिलाफ एक शांत पर मजबूत आवाज, और स्वर्ग की परिभाषा फिर बदल जाती है। ये कोई जगह नहीं बल्कि एक अंदरूनी एहसास है त्याग और जुड़ाव में।
चार्ली का किरदार भी कमाल का है। एक दबी सहमी नागरिक से एक साहसी प्यार करने वाली औरत तक का उसका सफर, जो सिस्टम के खिलाफ सबसे इंसानी हथियार प्यार का इस्तेमाल करती है, और उसके दादा वैज्ञानिक डेविड बिंघम की विरासत कितनी जटिल है। वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, पर अनजाने में एक ऐसी दुनिया बना गए जो इंसानियत को ही कुचलती है।
इस हिस्से की लिखने की शैली भी अलग है, चिट्ठियों वाली शैली। इससे हमें चार्ली के मन की बातें सीधे पता चलती हैं, पर दुनिया टूटी फूटी सी लगती है। भाषा भी अक्सर रूखी मशीनी सी है, जो उस भविष्य के समाज को दर्शाती है।
ये भविष्य का चित्रण एक चेतावनी जैसा लगता है ना, खासकर आज के माहौल में। महामारी, निगरानी, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता की बहसें, ये दिखाता है कि कैसे अच्छे इरादे भी गलत दिशा में जा सकते हैं।
बिल्कुल। अब अगर हम तीनों हिस्सों को एक साथ रखकर देखें तो कई थीम और पैटर्न नजर आते हैं। सबसे पहले तो स्वर्ग की वो बदलती हुई मायावी सी प्रकृति, हर जमाने में किरदारों से ढूंढ रहे हैं, प्यार में, आजादी में, सुरक्षा में, घर में, पर वो या तो मिलता नहीं, या मिलता है तो बदल चुका होता है, या फिर एक धोखा साबित होता है।
हाँ, और वो स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा वाला तनाव जो पहले भाग से शुरू होकर तीसरे में अपने चरम पर पहुंचता है, क्या सच्ची आजादी मुमकिन है, या सुरक्षा की जरूरत हमेशा उसे कम कर देगी?
शक्ति का खेल भी हर कहानी में है, पैसे की शक्ति, उम्र और रुतबे की शक्ति, या फिर सीधे सीधे राज्य की ताकत।
पहचान का सवाल भी बार बार आता है, नस्लीय पहचान, सांस्कृतिक पहचान, व्यक्तिगत पहचान।
प्रेम को भी बहुत जटिल दिखाया गया है, वो आजादी भी दे सकता है और बंधन भी बन सकता है। उसमें जुनून भी है, शांति भी, और अक्सर त्याग भी मांगता है, जैसे चार्ली के केस में। बीमारी और शरीर की कमजोरी का विषय भी तीनों भागों में है। पहले डेविड की नाजुक सेहत, दूसरे डेविड का एड्स, तीसरे भाग में बीमारी का डर और एडवर्ड की हालत। ये शरीर की नश्वरता को दिखाता है।
और विरासत, कैसे अतीत की घटनाएं परिवार की या इतिहास की भविष्य की पीढ़ियों की जिंदगी तय करती हैं। इतिहास जैसे घूमता रहता है, नाम दोहराए जाते हैं, गलतियां दोहराई जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये उपन्यास अमरीकी सपने पर भी एक सवाल है, उसके वादों और उसकी हकीकतों पर।
वो जो ट्रिप्टिक वाली बनावट है वो भी बहुत असरदार है। तीनों कहानियां अलग होके भी जैसे एक दूसरे से बात करती हैं। पाठक खुद ही समानताएं और अंतर ढूंढने लगता है, और वो वॉशिंगटन स्क्वायर का घर एक स्थिर बिंदु की तरह खड़ा रहता है। नाम भी दोहराए जाते हैं, डेविड, चार्ल्स, एडवर्ड, ये और रहस्य गहरा करते हैं।
प्रतीक भी हैं, हवाई स्वर्ग भी है, खोई पहचान भी, पश्चिम आजादी का झूठा वादा है, घर सुरक्षा भी है, कैद भी। याना की हारा की भाषा भी बहुत घनी, गहरी, भावनात्मक रूप से तीव्र है, और हर खंड के हिसाब से बदलती है। 19वीं सदी की औपचारिकता, 20वीं सदी की उदासी, भविष्य की रूखी भाषा। इसे पढ़ना एक गहरा अनुभव है, कभी कभी थका भी देता है।
हाँ, भावनात्मक रूप से काफी भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर उपन्यास एक उदास और सोचने पर मजबूर करने वाली छाप छोड़ता है। ये पाठक को प्रगति, आजादी, प्यार, सुरक्षा, यहाँ तक कि अमेरिका के विचार पर भी सवाल उठाने को उकसाता है। भविष्य वाला हिस्सा तो खासतौर से परेशान करता है, क्योंकि वो हमारी आज की चिंताओं से जुड़ा लगता है। महामारी, निगरानी, क्लाइमेट चेंज।
पाठक उपन्यास की महत्वाकांक्षा और लेखिका की पकड़ से प्रभावित होता है, पर एक बेचैनी भी रहती है। ये दिखता है कि कैसे हमारी निजी जिंदगी की मुश्किलें अक्सर इतिहास की बड़ी अनदेखी ताकतों से जुड़ी होती हैं, सत्ता, बीमारी, पर्यावरण।
लेकिन जैसा हमने कहा, पूरी तरह निराशा भी नहीं है। चार्ली का वो आखिरी कदम, उसका प्यार और त्याग, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसा है। शायद यही दिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसानी रिश्ते, करुणा और निस्वार्थ प्यार ही हमें मायने और गरिमा दे सकते हैं।
तो अंत में हम शायद ये सोच सकते हैं कि टू पैराडाइज हमें दिखाता है कि स्वर्ग की भारी खोज अक्सर एक मृग तृष्णा ही साबित होती है।
हाँ, और सच्ची इंसानियत शायद आज़ादी या सुरक्षा जैसे बड़े आदर्शों में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी प्यार करने, जुड़ने और त्याग करने के उन छोटे निजी मगर साहसी पलों में बसती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।